पृष्ठ संख्या 174, काव्य आभिजात्य से मुक्ति का प्रयास। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला। निराला के संपूर्ण काव्य में उपेक्षित दलित के उन्नयन और जनसाधारण की प्रतिष्ठा के प्रति गहरी आस्था के दर्शन होते हैं। उपेक्षित या जनसाधारण उनके लिए कोई अमूर्त विचार नहीं है। उनकी तेजस्वी मेधा ने भारतीय समाज में उस वर्ग को पहचानने और उसकी दुख गाथा को अभिव्यक्ति देने में कभी कोई भूल नहीं की। ऐसा नहीं है कि निराला ने किसी समय विशेष में अनुभव और रचना की किसी विशेष दिशा में ही जनसाधारण को पहचाना हो। जनसाधारण की यह गहरी और वास्तविक पहचान निराला के व्यक्तित्व की सांसारिक निष्ठा से उद्भूत हुई है। जनसामान्य की उपेक्षा, उसके शोषण, उसके अपमान, उसकी निराशा, सहनशीलता और घोर विपत्तियों में भी जीवन के प्रति उसकी भोली भाली बेलाग निष्ठा तथा सहज विनम्रता भरा आत्मविश्वास, भारतीय जनसाधारण के चरित्र की इस सच्चाई को निराला ने बड़ी गहराई से और संपूर्णता पहचाना है। वास्तव में निराला जनसाधारण की इस चरित्रगत सच्चाई में से स्वयं ही भरे पूरे थे। रविन्द्रनाथ की तरह पथवासी गृहहारा के दर्शन उन्होंने खिड़की से नहीं किए थे, या पंत की तरह किसी विचार दर्शन की अनुप्रेरणा से उन्होंने एकाएक इस सामान्य जन की ओर अपनी कविता की निगाह नहीं उठाई थी। निराला स्वयं उस उपेक्षित, अपमानित, शोषित जनसामान्य के प्रतीक पुरुष हैं। उनका स्वभाव और उनका व्यक्तित्व अपनी समस्त ऊर्जा के साथ अपनी आंतरिक भीतरी तहों में उसी विराट और निश्चल भारतीय साधारणता से रचा हुआ है। इसीलिए उसकी पीड़ा, उसके नैराश्य, उसकी भोली भाली उत्कट आस्था और समय आने पर उसके विराट जागरण को उन्होंने इतनी गहराई से वाणी दी है। एक कवि के नाते वह सिर्फ वर्ग को अपनी सहानुभूति, करुणा और पक्षधरता ही नहीं देते, उसके बीच उसी में शामिल भी हैं। रचना और विश्वास के बीच किसी भी तरह की दूरी का यह अभाव पृष्ठ संख्या 175 ही निराला को रविंद्रनाथ और पंत से अलग करता है। जहाँ रविंद्रनाथ या पंत की कविताएं पढ़कर आप उस जगह पर आसानी से उंगली रख सकते हैं जो उनकी रचना और जनसाधारण के बीच में छूटी हुई है, वहाँ निराला की कविता पढ़कर यदि इस तरह की छूटी हुई जगह की तलाश आप करना चाहेंगे तो आपकी उंगली निराला की देह से ही कहीं छूती हुई लगेगी। आस्था और रचना की इस एकमेकता उनकी कविता में एक तान है। रचनात्मक चरित्र में द्वैत के इस अभाव के कारण ही उनकी प्रतिभा की तेजस्विता कहीं भी धूमिल नहीं पड़ती। इस दलित उपेक्षित जनसाधारण की पहचान रचना में इतनी आसान नहीं है। पिछले 2000 वर्षों के संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में इस वर्ग की पहचान की कोशिश लगभग नहीं के बराबर हुई है। साहित्य और दूसरी सभी कलाओं की अभिव्यक्ति और अभिरुचि का माध्यम हमेशा से सुविधाजीवी वर्ग रहा है। सारा भारतीय साहित्य और सारी कलाएं उनके बारे में और उन्हीं के लिए रची गई हैं। उनका विषय और उनको सराहने वाला दोनों यही अभिजात सुविधाजीवी और ऐश्वर्य संपन्न वर्ग रहा है। सभ्यता और संस्कृति के अधिकांश अनुशासन और नियम इसी वर्ग ने अपने मनोरंजार्थ अथवा अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित किए हैं। भारतीय वर्ण व्यवस्था एक तंत्रीय राजशाही और विशाल सिद्ध हस्त फौज एवं बाहरी साधन है जिनकी मदद से इस ऐश्वर्य संपन्न अल्पमत ने अपने को सदा सुरक्षित रखा है। जब भी किसी महान व्यक्ति ने इस सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर जनसाधारण को अपने नए जीवन दर्शन से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, इस अल्पमत ने बड़ी चालाकी से उसे अपने स्वार्थों तथा सुविधाओं के लिए इस्तेमाल कर लिया। फिर उपेक्षित, प्रताड़ित दलित या विशाल मानव समूह कहीं का कहीं या थोड़ा आगे खिसक कर खड़ा रह गया। सभ्यता ने हर बार दगा दिया। तरह तरह के प्रलोभन, आप्तवाक्य, भंवर जाल जनता के सामने फेंके गए। कभी संस्कृति के नाम पर, कभी कला, राष्ट्र प्रेम, कभी स्वामी भक्ति के नाम पर, कभी ईश्वर, धर्म, नैतिकता और महान परंपरा के नाम पर अपनी भोली भाली आस्था में जनता हर बार ठगी गई। धीरे धीरे मृत्यु गर्भ में घिसटती हुई, झुकती, मुरझाती, जर्जर होती, अंधेरे में खड़ी, चेहरा पीला पड़ा, रीढ़ झुकी, हाथ जोड़े, आंख का अंधेरा बढ़ा, सैकड़ों सदियां गुजरी। पृष्ठ संख्या 176। बड़े बड़े ऋषि आए, मुनि आए, कवि आए, तरह तरह की वाणी जनता को दे गए। किसी ने कहा कि एक तीन है, किसी ने कहा कि तीन तीन है, किसी ने नसें टोई, किसी ने कमल देखे, किसी ने विहार किया, किसी ने अंगूठे चूमे, लोगों ने कहा कि धन्य हो गए मगर खंजड़ी ना गई। दगा की इस सभ्यता ने दगा की। ये ऋषि मुनि भी उसी अभिजात वर्ग के पोषक थे। अधिकांश कवि भी अपनी रचना का स्रोत इसी वर्ग को बनाए हुए दिखते हैं। उनकी सारी परिभाषाएं, उनके विचार, आप्तवचन, चमत्कार पूर्ण वाणियों का भ्रमजाल सिर्फ उस अल्पमत की सुरक्षा के निमित्त रचा गया मालूम पड़ता है। सभी ने इस विशाल जनसाधारण का इस्तेमाल किया, उसका शोषण किया, उसके अनंत रस स्रोत को दुहते रहे, उसकी तारीफ भी की, उसे जनार्दन भी कहा, उसकी पूजा का ढोंग भी किया, तो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए। जनता ऐसे संस्कृति के रक्षकों पर श्रद्धा गदगद बिनत लुटती गई, वही खंजड़ी की खंजड़ी बजाती हुई। निराला इतिहास के इसी मर्म पर उंगली रखते हैं। इसी ऐतिहासिक पहचान की पृष्ठभूमि में वह जनसाधारण की प्रतिष्ठा का बीड़ा अपनी कविता के माध्यम से उठाते हैं। उपर्युक्त कविता वह वैचारिक जमीन है, समझ और संवेदना का वह आत्मनिर्णय है, जहाँ से निराला कविता और कला की मुक्ति का आवाहन करते हैं। इतनी साफ और संशय रहित ऐतिहासिक दृष्टि हजारों साल बाद किसी भारतीय कवि के अंदर दिखाई देती है। इसी वैचारिक ठोस जमीन से उन्होंने उपेक्षित के उन्नयन का सवाल अपनी रचनाओं में उठाया है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सभ्यता, संस्कृत की रचना और सुरक्षा का सवाल सिर्फ एक वर्ग विशेष के निजी अस्तित्व रक्षा का षड्यंत्र है। जनता हजारों वर्षों इस भुलावे में रही, अब उसे नहीं रहना चाहिए। इतिहास की लहर अब जरूर पलटा खाएगी। सारी ब्राह्मण संस्कृति, ज्ञान दर्शन, वेदांत, कवित्व और इतिहास सभी उसी राज्य की अपनी सुरक्षा के लिए तैनात फौजे हैं, किले हैं। जनता खूब ठगी गई अपने भोले भाले विश्वास के कारण। जब भी ठगी गई, जब भी जनता की आँख खुली, उसने पाया कि संस्कृति, कला, ईश्वर, राष्ट्र प्रेम, स्वामी भक्ति और नैतिकता की सुरक्षा के नाम पर वही राजे, वही पृष्ठ संख्या 177, अल्पमत अपने किले में सुरक्षित मुस्कुरा रहा है। दगा की सभ्यता ने हर बार दगा की, राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, कितने नाट्य कलाकारों ने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता का जादू चला, राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खोली, राजे ने अपनी रखवाली की। भारतीय इतिहास, राजतंत्र और समाज व्यवस्था की अपनी इसी समझ की जमीन पर निराला जनसाधारण की प्रतिष्ठा का सवाल उठाते हैं। जाति वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण संस्कृति द्वारा निचले वर्ग के लोगों को लगातार सदियों तक दबा दबा कर उन्हें जर्जर बना देना तथा अंततः भारतीय मेधा का भी अपने स्वार्थों के लिए बड़ी चालाकी से इस्तेमाल कर लेना और आज के भारतीय समाज में भी उसी की पुनरावृत्ति पर पुनरावृत्ति, इसे निराला अच्छी तरह समझते हैं और इसके खतरे से वह पूरी तरह आगाह हैं। इस संपूर्ण सामाजिक बनावट पर ही प्रहार उनका लक्ष्य है। यह प्रहार उसी तरह की अभिजात काव्य रचना के माध्यम से संभव नहीं है जो कालिदास से लेकर रविंद्रनाथ तक होती रही है। इस तरह की रचना राजे के किले को और अधिक मजबूत बनाएगी। इसीलिए निराला संपूर्ण रचनात्मक निष्ठा पृष्ठ संख्या 178 के साथ और कला को आभिजात्य की इस परंपरा से तोड़कर उसे लोक भूमि पर नियोजित करना चाहते हैं। अब तक का संपूर्ण भारतीय साहित्य उसी द्विज संस्कृति की देन है। उसे विस्तृत लोकभूमि पर लाने का थोड़ा प्रयास या तो कबीर ने किया या राम के माध्यम से तुलसीदास ने, सिवा कुछ संतों भक्तों और सन्यासियों के। सारी भारतीय मेधा उसी सुविधा संपन्न वर की सुरक्षा में लगी हुई जान पड़ती है, बल्कि यदि उसका संबंध भी इस उपेक्षित जनसाधारण से रहा है तो उसने धीरे से खिसक कर अपनी जगह उसी अल्पमत में बना ली है। वैसे भी यह एक प्रकार की गद्दारी है, एक अजब सी दर्दनाक बात है जो हमारी संपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा में बार बार घटित होती रही है। तुलसीदास जो निराला को इतने प्रिय हैं, का भीतरी मंतव्य भी रामचरितमानस के माध्यम से उस सवर्ण संस्कृति की सुरक्षा और उसका पोषण ही लगता है। इन दो चार उदाहरणों को छोड़कर संपूर्ण मध्यकालीन हिंदी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है? या तो वह प्रपत्ति भाव का साहित्य है, या अपने आश्रयदाताओं के मनोरंजन और विलास का, अथवा उनकी कल्पित वीरता के संबंध में प्रशस्ति और ललकार का। हिंदी साहित्य की यही तीन आंतरिक अनुप्रेरणाएं हैं। यहाँ मेरा मकसद हिंदी के मध्यकालीन या पूर्ववर्ती साहित्य को नीचा दिखाना या उसकी व्यर्थता साबित करना नहीं है। कोई भी रचना और मेधा अपने समय की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मनोभूमि से बाहर जाकर जीवित नहीं रह सकती। मेरा उद्देश्य तुलसीदास या कालिदास या शंकराचार्य को मार्क्सवादी नपने से नापना नहीं है। जब हम अपने 2000 साल के इतिहास में उसकी सामाजिक रचना में बार बार जनसाधारण को टटोलते हैं, तब यह सवाल उठता है, वह कहाँ है, उसका पक्षधर कौन है, उसे कैसा व्यवहार मिला है, वह किधर दबा हुआ चुपचाप पड़ा है। तब थोड़ी सहम पैदा होती है, गुस्सा लगता है, तकलीफ होती है और फिर छानबीन शुरू होती है। इस छानबीन में सचमुच एक विचित्र प्रकार की निराशा हाथ लगती है, क्योंकि चाहे निराला हो या मैं खुद, हम सभी उसी द्विज संस्कृति की उपज हैं। अपने को उससे अलग करके एक नई राह निकालना कितना कठिन, तकलीफ देह और असंभव के निकट लगता है। ऐसे में यदि निराला ने भारतीय इतिहास को इस नुक्ते पर पकड़ लिया और अपने लिए एक नई खतरा भरी राह ढूंढ निकालने की कोशिश की, यदि ऐसा निर्णय उनकी रचनाओं में झलकता है, तो यह भारतीय मेधा में एक नई मौलिक शक्ति का प्रथम बीजारोपण है। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो निराला द्वारा काव्य की मुक्ति का आह्वान और निर्णय निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कार्य लगता है, क्योंकि इसके खतरे बहुत साफ हैं। जो अल्पमत, जो राजे आज तक अपनी रखवाली करता रहा, वह इतिहास से गायब थोड़े हो गया है। उसकी नज़र ऐसे खतरनाक लोगों पर जरूर होगी। इसका पृष्ठ संख्या 179 अर्थ यह हुआ कि इस तरह का निर्णय लेना अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना है। जिसके पास फौजें हैं, सुदृढ़ किले हैं, ऐश्वर्य है, भेदिए हैं, चटुकार मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए दरबारी हैं, पोथियों में जनता को दबाए हुए विद्वत वर्ग हैं, उसके आश्रय को छोड़कर निहत्थे असहाय विराट जन समुदाय के साथ अपने को जोड़ना, अपने आप को सुरक्षा पंक्ति के उस ओर खड़ा करना, चाहे हजारों वर्षों के इतिहास में भारतीय मेधा के लिए कितना भी बड़ा नैतिक निर्णय क्यों न हो, एक व्यक्तिगत खतरा तो पैदा करता ही है। यह दरअसल परंपरा और संस्कृति से एक प्रकार का दो तरफा देश निकाला है। इस खतरे को कितने लोग उठा सकते हैं, और अगर निराला ने यह खतरा उठाया तो उनको क्या सजा मिलेगी, यह सवाल निराला के सामने भी है। अपने प्रथम काव्य संग्रह अनामिका की इस कविता में अपने मन के इसी सवाल को निराला उठाते हैं। अगर अपने दुखी भाई को देखकर तेरे हृदय में दुख की छाया पड़ती है, और इसे मैं अपनी संवेदना का अंग मान बैठता हूँ और उससे एक प्रतिपक्ष का साहित्य रचता हूँ, तो इसका नतीजा क्या होगा, मुझे कहाँ ठौर मिलेगा? काव्य जगत में, संपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा में मेरी स्थिति, मेरी जगह कहाँ होगी? इस तरह हजारों साल बाद एक प्रतिपक्ष की घोषणा क्या रंग लाएगी? इन्हीं सवालों को निराला ने अपनी इस प्रारंभिक कविता अधिवास में उठाया है। इन उपयुक्त सवालों को उठाकर निराला अपना निर्णय भी सुना देते हैं। इससे यह सच है कि इससे मुझे बिरादरी बाहर कर दिया जाएगा, किंतु मुझे कोई डर नहीं है। अब मेरी और कोई नियति नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद ही मैं अपने इस निर्णय को बदल सकता हूँ। मुझे अपने उस दुखी भाई को गले लगाने और उसका दुख महसूस करने और उसे रचने का दंड भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ आकर अपने निर्णय के प्रति निराला के मन में कोई द्वंद्व, कोई दुविधा नहीं है। कहाँ डॉट डॉट मेरा अधिवास कहाँ, क्या कहाँ डॉट डॉट रुकती है गति जहाँ, भला इस गति का शेष संभव है क्या। करुण स्वर का जब तक मुझ में रहता है आवेश, मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ वेदना आई। पृष्ठ संख्या 180। उसके निकट गया मैं धाय, लगाया उसे गले से हाय, फंसा माया में हूँ निरुपाय, कहो फिर कैसे गति रुक जाए। उसकी अश्रु भरी आँखों पर मेरे करुणांचल का स्पर्श, करता मेरी प्रगति अनंत, किंतु तो भी मैं नहीं विमर्श। छूटता है यद्यपि अधिवास, किंतु फिर भी न मुझे कुछ त्रास। वह अधिवास, वह सुरक्षा तभी मिलेगी जब कवि यह नया प्रतिपक्ष बनाना छोड़ दे। निराला साफ कहते हैं कि यह कदापि संभव नहीं है, यह मेरा अपना ठाट है। मेरे हृदय में दुख की जो छाया पड़ी, वह किसी पराए की नहीं, अपने ही दुखी भाई की है। यह वही भाई है जो हजारों साल तक उपेक्षित, अपमानित और प्रताड़ित होता रहा है, जिसकी कभी नसें टोई जाती रही हैं और कभी जनार्दन संबोधन मिलता रहा है, जो अपने ही रक्त में भूल से सदियों तक स्नान करता रहा है। उसकी पक्षधरता मेरी विवशता है। इसी एकांत निसंशय निर्णय से निराला काव्य की मुक्ति का जिहाद शुरू करते हैं। उन्हें पता है इसकी सजा क्या मिलेगी, वे उसे भुगतने के लिए निर्भय तैयार हैं। यह निर्णय कवि ने अपने रचना जीवन के प्रारंभ में ही लिया है। वह अपनी रचनात्मक मनोभूमि के बारे में स्पष्ट है। अभी उसने इस दुखी भाई का साहित्य नहीं रचा है, अभी वह रचना के प्रतिपक्ष में इसकी पक्षधरता को लेकर खड़ा नहीं हुआ है। अभी यह सिर्फ निसंशय निर्णय है। कवि अपनी नियति को टटोलता है और निर्णय को स्थगित नहीं रखता, उसे अपनी इस शुरू की रचना में ही प्रकाशित कर देता है। मैंने निराला के अध्ययन के संबंध में जो स्थापना रखी है, वह वहाँ भी सच साबित होती है। संसार के सारे महान कवियों की तरह उनके भीतर भी रचना प्रक्रिया के कई कई स्तर एक साथ क्रियाशील हैं। काव्य का उसके अभिजात संस्कारों से मुक्ति का सवाल भी निराला अपने रचना जीवन के प्रारंभ से ही उठाते हुए दिखाई देते हैं। अनामिका की इस कविता में लिया हुआ निर्णय निराला ने आगे के अपने रचना जीवन में सच कर दिखाया है। अगर इस संदर्भ में हम निराला के विराट काव्य व्यक्तित्व की समीक्षा करें तो उपेक्षित के उन्नयन, उसके प्रति गहरी करुणा और सामान्य की प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति देने वाली कविताएं निराला के अधिकांश संग्रहों में समान रूप से मिल जाएंगी। पृष्ठ संख्या 181। परिमल की विधवा, भिक्षुक, सांध्या सुंदरी, दीन, अनामिका की मित्र के प्रति दान, प्रगल्भ प्रेम, तोड़ती पत्थर, वह किसान की नई बहू की आंखें, और छवि तथा कुकुर मुत्ता कविता और अलिमा की, यह है बाजार, मेरे घर के पश्चिम सड़क के किनारे, चूंकि यहाँ दाना है, बेला के बहुत सारे गीत और गजलें, पूरे नए पत्ते, संग्रह की कविताएं तथा आराधना की, ऊंट बैल, मानो जहाँ बैल घोड़ा है, खेत जोत कर घर आए हैं, माँ की साड़ी, धान कूटता है और खिरनी के पेड़ तले, जैसे गीत, अर्चना की आशा आशा मरे, गीत गुंज की कविता, बापू तुम यदि मुर्गी खाते, तथा सांध्य काकली की गहरी विभावरी शीत की, इत्यादि कविताएं निराला की रचना प्रक्रिया के इसी रूप की सतत क्रियाशीलता का प्रमाण है। अतः प्रथम संग्रह अनामिका की अधिवास कविता के माध्यम से लिए गए निर्णय के अनुसार निराला अपनी रचनाशीलता में सतत जागरूक हैं। इसके लिए उनको कितना और क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, लेकिन इसकी चेतना निराला को पहले से ही थी और एक सत्यदृष्टा होने के नाते उन्होंने कभी भी अपना निर्णय, अपना पक्ष बदला नहीं। उन्होंने अपने रचनात्मक चरित्र में द्वैत नहीं आने दिया। कविता के अभिजात ऐश्वर्य संपन्न जगत से अपने निष्कासन की तीखी चेतना भी उनके अंदर बरकरार है। फिर भी वह उस सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के आरामदेह गृह में नहीं जाना चाहते। वहाँ उन्हें अपनी मृत्यु ही दिखाई देती है। मैं रहूँगा ना गृह के भीतर, जीवन मेरे मृत्यु के विवर। इन पंक्तियों को ना जाने कितने आत्म साक्षात्कारों में समझा जा सकता है। जैसे वह बार बार स्वयं को ही अपने उस निर्णय के प्रति आगाह करते रहते हैं, उसकी याद दिलाते रहते हैं। साथ न होना गांठ खुलेगी, छूटेगा उरका सोना, पाना ही होगा खोना। साथ न होना हाथ बचा जा, कटने से माथ बचा जा, अपने को सदा लचा जा, सोच कर मिला अगर कोना, साथ न होना। यह उसी निर्णय के प्रति अपने आप को, संपूर्ण जन समुदाय को अपनी इस नई काव्य रचनाशीलता की चेतावनी है। लीक न पीटना, फिर मुड़कर वही मत जाना, फिर उसी अल्पमत में अपनी जगह बनाने की कोशिश न करना, अपने लोगों के बीच ही रहना, वरना तुम्हारी गांठ का सोना वो लुटेरे लूट लेंगे। तुम्हारी प्रतिभा, पृष्ठ संख्या 182, वर्चस्विता तेजस्विता का इस्तेमाल उपयोग करके तुम्हें रिक्त कर देंगे, जिसे तुम अपनी उपलब्धि समझोगे, जिस सुविधा, सुरक्षा, ऐश्वर्य और स्थापना को तुम पाना समझोगे, दरअसल वही तुम्हारा उससे बड़ा खोना होगा। तुम अपना निजत्व, अपना मैं सदा के लिए हार जाओगे। अतः किसी भी प्रलोभन में पड़कर राज्य के, समाज के जादू में मत फंसना, वरना अपने ही रक्त में स्नान करोगे। इसके बाद निराला अपनी स्ट्रेटजी कविता में प्रकट करते हैं। उनसे बच रहा, अपना कलम बचाए रख, अपना दिमाग बचाए रख, इसकी चिंता मत कर कि अधिवास की जगह तुम्हें इस संपूर्ण परंपरा में यश का एक छोटा सा कोना ही क्यों मिला, वही बहुत है। सबसे बड़ी नैतिकता यही है कि अपने दुखी भाई के हृदय में पड़ी हुई छाया को मत भूला। निष्कासन की इसी तीखी चेतना को निराला जनता के हृदय जिया, जीवन विषम लिया से अभिव्यक्त करते हैं। बाहर निकाल दिए जाने की यह चेतना उन्हें बार बार आंदोलित करती है और एक तीखे एकाकीपन से भर देती है। फिर भी वह संतुष्ट हैं। ऊपर जितनी ही बर्फ गिरेगी, नीचे सृजन की अंतः सलीला उतनी ही स्रोतस्विनी बनेगी। बाहर मैं कर दिया गया हूँ, भीतर पर भर दिया गया हूँ। ऊपर वह बर्फ गली है, नीचे यह नदी चली है। सख्त तने के ऊपर नर्म कली है, इसी तरह हर दिया गया हूँ, बाहर मैं कर दिया गया हूँ। निराला के भीतर जनसामान की पुनर्प्रतिष्ठा और उपेक्षित के उन्नयन की जो यह सांसारिक निष्ठा है, अपने रचना जीवन के प्रारंभ में ही उस निष्ठा को साकार करने के लिए जो लिया गया निर्णय है, वही उन्हें जनसाधारण की समस्याओं की ओर आकर्षित करता है। इस तरह काव्य की विषय वस्तु के स्तर पर यह बदलाव या उनकी रचनाशीलता का यह नया आयाम एक नए ढंग की रचना प्रक्रिया की सतत क्रियाशीलता, अत्यंत सशक्तता से उनकी उन कविताओं में उद्घाटित हुई है, जिसकी लगभग संपूर्ण सूची हम पिछले पन्नों में दे चुके हैं। आश्चर्य यह है कि निराला इतिहास की इस समझ और कविता की इस सर्वथा नई जमीन को मुक्त कविता का रूप नहीं मानते, बल्कि विषय के स्तर पर इस सुखद और मौलिक बदलाव की अपेक्षा वह छंद मुक्त को ही कविता की मुक्ति में प्रधानता देते हैं। पृष्ठ संख्या 183। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा कि संपूर्ण हिंदी कविता पिछले हजार वर्षों से छंदों के बंधन से जिस तरह जकड़ी हुई थी, उस स्थिति में छंद से मुक्ति का आवाहन निराला को सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगा होगा। इसीलिए निराला जब भी कविता की मुक्ति की बात करते हैं, वह छंद मुक्त का ही प्रश्न उठाते हैं। अपने संग्रह परिमल की कविताओं का विभाजन भी उन्होंने छंदबद्धता और छंद मुक्ति के आधार पर ही किया है। फिर इस छंद मुक्ति को कविता की मुक्ति का रूप मानकर उसकी भूमिका में वह छंद विधान के प्रश्न पर काफी बहस करते हुए दिखाई देते हैं और मुक्त छंद का हिंदी में प्रादुर्भाव उसका विकास, उसकी स्थिति, उसकी विशेषताओं और उसकी उपलब्धि तथा महत्व पर काफी विस्तार से विचार करते हुए दिखाई देते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि छंद से मुक्ति ही कविता की मुक्ति है। इसकी चर्चा वह अपनी दो तीन कविताओं में भी करते हैं। इसके साथ विचार के स्तर पर संपूर्ण कविता का उसकी परंपरागत अभिजात संस्कारों से विषय वस्तु की मुक्ति और प्रश्न वह कहीं भी उठाए हुए नहीं दिखाई देते। इस भूमिका में और आगे चलकर अपने एक निबंध मेरे गीत और कला में भी वह छंद मुक्ति पर ही ज्यादा बल देते हैं और बादल राग तथा जूही की कली इत्यादि कविताओं का विवेचन करते हुए वह बादल राग को मुक्त गीतों की संज्ञा देते हैं। संभवतः विषय वस्तु के स्तर पर कविता की मुक्ति को वह स्वयं चालित मान लेते हैं कि ऐसा तो होगा ही। वैसे यह भी निश्चयपूर्वक कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी बहुत सी कविताएं जो मुक्त छंद में लिखी गई हैं अपने विषयगत और प्रभावगत संस्कारों के स्तर पर नितांत पारंपरिक हैं। इस तरह सिर्फ छंद मुक्ति ही कविता की मुक्ति कैसे मानी जा सकती है? छंद मुक्ति को कविता की मुक्ति मानकर वह अपने पक्ष में गायत्री मंत्र और वैदिक मंत्रों को उद्धृत करते हैं और प्रवाह तथा पाठ प्रक्रिया को छंद का अनिवार्य गुण बतलाते हैं, तुक और मात्रा या वर्णों की समता को नहीं। इस संबंध में अपने विचार उनके अपने ही शब्द में द्रष्टव्य हैं। इसके परिमल मैंने तीन खंड किए हैं। प्रथम खंड में सममात्रिक सांत्यानुप्रास कविताएं हैं, जिनके लिए हिंदी के लक्षण ग्रंथों के द्वारपालों को प्रवेश निषेध या भीतर आने की सख्त ममानियत है, कहने की जरूरत शायद ना होगी। दूसरे खंड में विषम मात्रिक सांत्यानुप्रास कविताएं हैं, ह्रस्व दीर्घ मात्रिक संगीत का मुक्त रूप ऐसा ही होगा, जहां स्वर के उत्थान पतन पर ही ध्यान रहता है और भावना प्रसारित होती चलती है। तीसरे खंड में स्वच्छंद छंद है, जिसके संबंध में मुझे विशेष रूप से कहने की जरूरत है, कारण इसे ही हिंदी में सर्वाधिक कलंक का भाग मिला है। मनुष्य की मुक्ति की तरह ही कविता की मुक्ति भी होती है। मनुष्य की मुक्ति पृष्ठ संख्या 184, कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता, प्रत्युत उससे साहित्य में एक स्वाधीन चेतना फैलती है। वेदों में काव्य मुक्ति के ऐसे हजारों उदाहरण हैं, उस पर किसी ने आज तक आपत्ति नहीं की, शायद यह सोचकर कि उसे साक्षात परमात्मा आकर लिख गए हैं। अजी परमात्मा स्वयं अगर यह रबड़ छंद और केचुआ छंद लिख सकते हैं, तो मैंने कौन सा कसूर कर डाला? आखिर आपके परमात्मा का ही तो अनुसरण किया है। आप लोग कृपा करके मुझे क्षमा क्यों नहीं कर देते? साहित्य की मुक्ति से जाति के मुक्त प्रयास का पता चलता है। धीरे धीरे चित्र प्रियता छूटने लगती है। मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। उसका समर्थक उसका प्रवाह ही है, वही उसे छंद सिद्ध करता है और उसका नियम राहित्य उसकी मुक्ति। इस छंद में आर्ट ऑफ रीडिंग का आनंद मिलता है। परिमल की भूमिका हिंदी काव्य की मुक्ति के मुझे दो उपाय मालूम दिए, एक वर्ण वृत्त में, दूसरा मात्रा वृत्त में। जूही की कली की वर्ण वृत्ति वाली जमीन है, इसमें अंत्यानुप्रास नहीं, यह गाई नहीं जा सकती। इससे पढ़ने की कला व्यक्त होती है। इसके छंद को मैं मुक्त छंद कहता हूँ। दूसरी मात्रा वृत्त वाली रचनाएं परिमल के दूसरे खंड में हैं। इनमें लड़ियाँ असमान हैं, पर अंत्यानुप्रास है। आधार मात्रिक होने के कारण ये गाई जा सकती हैं, पर संगीत अंग्रेजी ढंग का है। इस गति को मैं मुक्त गीत कहता हूँ। प्रबंध प्रतिमा मेरे गीत और कला पृष्ठ 221। अगर इस वक्तव्यों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि निराला ने विषय वस्तु और संवेदना के स्तर पर कविता की मुक्ति की बात कहीं भी नहीं उठाई है। छंद के अनुशासन से अलग हो जाने को ही वह कविता की मुक्ति मानते हैं। फिर इसके उद्देश्य पर विचार करते हुए वह कहते हैं कि मुक्त काव्य साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता, प्रत्युत उससे साहित्य में एक स्वाधीन चेतना फैलती है। इसका संकेत यह है कि छंद के अनुशासन में बंधा काव्य साहित्य के लिए अनर्थकारी साबित हो सकता है और साहित्य की स्वाधीन चेतना उससे बाधित होती है। इस अनर्थ और प्रतंत्रता से बचने के लिए ही उन्होंने मुक्त छंद को अपनाया और उसे श्रेयस्कर मानकर अपने आलोचकों द्वारा लगाए गए इल्जामों की चिंता छोड़ दी। इसके लिए वह मजाक में अपने पाठकों से क्षमा भी मांगते हैं। छंद मुक्ति की इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए उन्होंने परिमल की कविताओं का प्रकाशन 3 खंडों में नियोजित किया है। मेरी यह धारणा है कि निराला का यह दृष्टिकोण एक असत्य से अधिक कुछ नहीं है। छंद से मुक्त हो जाने पर कविता अपनी छंद अनुशासन की परंपरा पृष्ठ संख्या 185 से मुक्त हो सकती है, लेकिन मात्र इसी से उसमें संवेदनागत मुक्तता कैसे आ जाएगी। स्वयं निराला ने छंद प्रयोगों के अनुसार परिमल की कविताओं का जो विभाजन किया है वह संवेदनागत वैविध्य से भरा हुआ है। जूही की कली जो स्वच्छंद छंद में लिखी गई है, प्रेम, रोमांस और विलास की अद्भुत छवियों वाली कविता है और सभी लिहाज से वह छायावादी ऐश्वर्य संपन्नता का उदाहरण है। वही कहीं भी भारतीय कविता की 2000 वर्षों की अभिजात परंपरा से अलग की कविता नहीं है। इसी तरह शेफालिका, जागृति में सुप्त थी इत्यादि कविताएं भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती हैं। सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, या बंद कंचुकी के सब खोल दिए प्यार से यौवन उभारने, जैसे पंक्तियां नितान नृत्यात्मक हैं। मैथिली शरण गुप्त की सखी हुए मुझसे कहकर जाते के सामने ये पंक्तियां भले नई लगें, बिहारी देव और घनानंद की रचनाओं के आगे इनकी कोई अलग से विशिष्टता नहीं बताई जा सकती। अतः काव्य की आभिजात्य परंपरा से मुक्ति का उदाहरण ये कविताएं नहीं है। इसी तरह परिमल के दूसरे खंड में भी जहाँ दीन, विधवा या भिक्षुक जैसी संवेदनागत मुक्ति से किंचित संलग्न छंद अनुशासन से मुक्त कविताएं हैं, वहीं इसी छंद अनुशासन से मुक्त ऐसी कविताएं भी हैं जिनकी संपूर्ण भाषिक संयोजना और संवेदना ऐश्वर्य संपन्न अभिजात रंगों से पूर्ण हैं। या तो उनमें रक्त प्लावित रोमांस का वर्णन मिलता है अथवा वेदांत दर्शन का कवित्वमय आख्यान। कर्ण सिर्फ एक उन्माद, विस्मृति भोर, विफल वासना, बहु स्वप्न स्मृति आदि ऐसी ही कविताएं हैं। स्वयं जूही की कली या संध्या सुंदरी की भाषिक संरचना छायावादी है और वह किसी खास संवेदनागत नवीनता की कविताएं नहीं हैं। धीरे धीरे उतर छितिज से आ वसंत रजनी और संध्या सुंदरी की सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह की रूपात्मकता में कोई विशेष फर्क नहीं है। सखी का प्रसंग ही रीतकालीन है। इस तरह निराला कविता की मुक्ति पर विचार करते समय छंद मुक्ति पर इतने अधिक केंद्रित हो जाते हैं कि वह संवेदना और भाषिक संरचना की अभिजातता और पारंपरिकता से उसकी मुक्ति की बात भूल जाते हैं। जूही की कलिया संध्या सुंदरी की प्रशंसा वस्तु पक्ष को लेकर ही उस जमाने में ज्यादा हुई क्योंकि उसके वस्तु पक्ष की परंपरा से पाठक वर्ग परिचित था, उसका उसे अभ्यास था। बिहारी या घनानंद की नायिका की हल्की सी झलक पाते ही वह फड़क उठा, लेकिन इसकी जो निंदा हुई वह छंद पक्ष को लेकर ही हुई। संभवतः इसीलिए निराला का सारा ध्यान एक हठ के रूप में छंद पर ही केंद्रित हो उठा। उसी के लिए उनकी खिल्ली उड़ाई गई और चुनौती महसूस करके उसी जगह वह तन कर खड़े हो गए। इसीलिए मेरे विचार से उपर्युक्त कविताओं में से अधिकांश काव्य आभिजात्य पृष्ठ संख्या 186 से मुक्ति के प्रयास में लिखी गई कविताएं नहीं हैं। इस प्रयास का उदाहरण वह कविताएं हैं जो विषय वस्तु संवेदना, भाषिक संरचना, शिल्प तंत्र और छंद कविता के इन सभी पारंपरिक ऐश्वर्य संपन्न अभिजात्य संस्कारों से पूर्ण मुक्ति के सम्मिलित प्रयास से समन्वित हैं और जिनकी सूची इसी निबंध में एक जगह मैं दे चुका हूँ।